अगला अध्याय जिसका शीर्षक है प्रजननता फर्टिलिटी। प्रजननता का अर्थ मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी। जनसंख्या के संदर्भ में प्रजननता या उर्वरता का अभिप्राय एक नियत समयावधि में किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा प्रदत्त सजीव जन्मों लाइव बर्थ की वास्तविक संख्या से है। प्रजननता की माप नियत समयावधि में जन्मे सजीव शिशुओं की आवृत्ति या शिशुओं की संख्या से की जाती है। पहला, थॉमसन एवं लेविस के शब्दों में, सामान्यतः प्रजननता का प्रयोग किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा उत्पन्न शिशुओं की वास्तविक संख्या को प्रकट करने के लिए किया जाता है। फर्टिलिटी इज जनरली यूज टू इंडिकेट द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ए वुमन और ग्रुप ऑफ वुमन्स। दूसरा, प्रसिद्ध जनसंख्या भूगोलविद जॉन आई क्लार्क के अनुसार प्रजनन जीवित जन्मों की घटना है और इसका संदेह प्रजनन क्षमता से नहीं होना चाहिए, जिसका सामान्य अर्थ है हम पुनरुत्पादक क्षमता या शिशु धारण की क्षमता से लगाते हैं। फर्टिलिटी इज द ऑकरेंस ऑफ लाइव बर्थ एंड मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ फेकेंडिटी बाई विच वी नॉर्मली मीन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आर द एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रेन। प्रजननता फर्टिलिटी एंड प्रजनन क्षमता फेकेंडिटी में अंतर समझ लेना आवश्यक है। प्रजननता का संबंध वास्तविक सजीव जन्मों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से होता है, जबकि प्रजनन क्षमता किसी स्त्री की उसकी संपूर्ण प्रजनन अवधि में प्रजनन की सामर्थ्य से संबंधित होता है। प्रजननता की माप जीवित जन्मों के आंकड़ों के आधार पर की जा सकती है, किंतु किसी स्त्री में विद्यमान प्रजनन क्षमता का कोई स्पष्ट सूचक नहीं है। वह स्त्री जिसने कभी किसी शिशु को जन्म नहीं दिया हो, उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें प्रजनन क्षमता विद्यमान है अथवा नहीं। यह भी हो सकता है कि किसी स्त्री में प्रजनन क्षमता विद्यमान हो, किंतु अन्य कारणों से उसने कभी किसी शिशु को जन्म न दिया हो। इसके साथ ही यह बात पूरी तरह तय है कि जिस स्त्री में प्रजनन क्षमता का अभाव है, उसमें प्रजननता हो ही नहीं सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी स्त्री में प्रजननता के अभाव बच्चा न होने का कारण प्रजनन क्षमता की कमी के साथ ही पुरुष से समागम का न होना अथवा पति का नपुंसक होना आदि भी हो सकता है। यही कारण है कि प्रजनन क्षमता की माप अधिक जटिल तथा कठिन होती है, किंतु प्रजननता की माप में अधिक कठिनाई नहीं होती है। प्रजननता की माप मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। आंकड़ों की उपलब्धता, उद्देश्य तथा प्रयुक्त तकनीक के अनुसार प्रजननता की माप के लिए कई प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, अशोधित जन्मदर क्रूड बर्थ रेट। यह प्रजननता की माप की सबसे सरल और लोकप्रिय विधि है। यह किसी समय विशेष में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को प्रकट करती है। इसकी गणना के लिए एक वर्ष के अंतर्गत जन्मे कुल शिशुओं की संख्या को वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या से विभाजित किया जाता है और प्राप्त परिणाम में 1000 से गुणा किया जाता है। इसके परिकलन का सूत्र इस प्रकार है। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या बटे वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। इसकी गणना हेतु जनसंख्या के संगठन कंपोजिशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कुल जनसंख्या में बच्चे, वृद्ध, अविवाहित स्त्री एवं पुरुष आदि भी समाहित होते हैं जो प्रजनन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। इसके परिकलन के लिए जनसंख्या की आयु संरचना, लिंगानुपात, वैवाहिक स्तर आदि तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण यह प्रजननता के विषय में केवल सामान्य दशा को ही प्रकट करती है। इसी कारण इस दर से प्रजननता की शुद्ध माप नहीं हो पाती है, किंतु विश्व के अधिकांश देशों के संदर्भ में आंकड़ों की उपलब्धता और गणना की सरलता के कारण इसका प्रचलन अधिक है। विभिन्न देशों की प्रजननता की तुलना के लिए अशोधित जन्म दर का प्रयोग सर्वाधिक लोकप्रिय है। दूसरा, प्रजनन अनुपात या शिशु स्त्री अनुपात, फर्टिलिटी रेशियो और चाइल्ड वुमेन रेशियो। यह अशोधित जन्म दर की अपेक्षा अधिक उपयोगी माप है। इसके परिकलन में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं और प्रजनन आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष की सभी स्त्रियों को सम्मिलित किया जाता है। यह 5 वर्ष से कम आयु के कुल शिशुओं और प्रजनन आयु वर्ग की कुल स्त्रियों के अनुपात का सूचक है, जो प्रति हजार से प्रति 1000 स्त्रियों पर शिशुओं की संख्या को व्यक्त करता है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग होता है। प्रजनन अनुपात बराबर 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की कुल संख्या बटे प्रजनन आयु वर्ग के स्त्रियों की कुल संख्या गुणे 1000। सामान्यतः स्त्रियों की प्रजनन आयु 15 से 44 वर्ष मानी जाती है, किंतु प्रजननता अनुपात के परिकलन हेतु प्रायः इसे 15 से 49 वर्ष मान लिया जाता है। जोन्स के अनुसार इस अनुपात की गणना में 5 वर्ष की आयु तक के शिशु सम्मिलित किए जाते हैं। जब 5वें वर्ष के शिशुओं का जन्म हुआ होगा, उस समय उनकी माताओं की आयु उनकी वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम रही होगी। इस दृष्टि से प्रजनन अनुपात की गणना हेतु 15 से 44 वर्ष आयु वर्ग की स्त्रियों को सम्मिलित करना उचित प्रतीत होता है। प्रजनन अनुपात का प्रमुख गुण यह है कि इसमें केवल प्रजनन अनुपात की स्त्रियों को ही सम्मिलित किया जाता है, जो अधिक तथ्यपूर्ण और तार्किक है। इसके साथ ही 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को समाहित करने से शिशुओं के अंकन न होने की संभावना भी कम हो जाती है। इन गुणों के साथ ही प्रजनन अनुपात में निम्नलिखित त्रुटियां भी पाई जाती हैं। पहला, आयु वर्गानुसार आंकड़े सामान्यतः जनगणना आयु सारणी से प्राप्त होते हैं। अतः जनगणना वर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षों के लिए इसकी गणना नहीं की जा सकती है। दूसरा, इसमें प्रजनन आयु वर्ग की सभी स्त्रियों को सम्मिलित किया जाता है और उनके वैवाहिक स्तर अथवा प्रजनन क्षमता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार इसकी गणना में प्रजनन के अयोग्य स्त्रियों के भी सम्मिलित होने के कारण यह विधि दोषपूर्ण है। तीसरा, इसकी गणना हेतु 5 वर्ष से कम आयु के जीवित शिशुओं को ही सम्मिलित किया जाता है और इस अवधि में मृत शिशुओं की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो दोष मुक्त नहीं है। तीसरा, सामान्य प्रजनन दर, जनरल फर्टिलिटी रेट, यह अशोधित जन्म दर का ही संशोधित रूप है। इसकी गणना में कुल स्त्रियों के स्थान पर केवल प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके द्वारा प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। इसके परिकलन के लिए 1 वर्ष में होने वाले कुल सजीव जन्मों को प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या से विभाजित करके उसमें 1000 से गुणा किया जाता है। सामान्य प्रजनन दर की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त होता है। सामान्य प्रजनन दर बराबर 1 वर्ष में सजीव जन्मों की कुल संख्या बटे प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या गुणे 1000। स्त्रियों की संख्या के लिए सामान्यतः वर्ष के मध्य की अनुमानित संख्या का प्रयोग किया जाता है। प्रजनन दर ज्ञात करने की यह विधि उन दशाओं में अधिक सार्थक एवं उपयोगी होती है जहां जन्मों का पंजीकरण और गणना संतोषप्रद होती है और साथ ही शिशु के जन्म के समय माता की आयु का भी अभिलेख तैयार किया जाता है। शिशुओं के जन्मों और स्त्रियों की आयु के विषय में सही जानकारी के अभाव में इस प्रकार के सूचक में अनेक त्रुटियां आ जाती हैं, जिससे इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। सामान्य प्रजनन दर की गणना हेतु प्रजनन आयु सामान्यतः 15 से 44 वर्ष मानी जाती है, किंतु यह 15 से 49 वर्ष भी मानी जा सकती है। इस प्रजनन दर का मुख्य दोष यह है कि इसकी गणना में प्रजनन आयु वर्ग की वे स्त्रियां भी सम्मिलित होती हैं जो संतानों उत्पत्ति के अयोग्य, अविवाहित, विधवा, बांझ आदि होती हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः वैध संतानों उत्पत्ति के आंकड़ों ही प्राप्त होते हैं। अतः जिन देशों में वैध संतानोत्पत्ति ही प्रमुख होती है वहां के लिए यह सूचक अधिक उपयोगी होगा, किंतु जहां अवैध जन्मों की संख्या भी अधिक होती है वहां के लिए इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। चौथा, आयु विशिष्ट जन्म दर, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, यह 1 वर्ष में विशिष्ट आयु वर्ग की स्त्रियों द्वारा जनित शिशुओं की संख्या और संबंधित आयु वर्ग के कुल स्त्रियों की संख्या के अनुपात का द्योतक है, जो प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या को प्रकट करता है। आयु वर्ग का निर्धारण सामान्यतः 5 वर्षीय श्रेणियों के रूप में किया जाता है, किंतु यह अंतराल इससे भिन्न भी हो सकता है। इसके परिकलन का सूत्र इस प्रकार है, आयु विशिष्ट जन्मदर बराबर विशिष्ट आयु वर्ग की स्त्रियों द्वारा जनित शिशुओं की कुल संख्या बटे उसी आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या गुणे 1000। स्त्रियों की प्रजनन क्षमता और प्रजननता विभिन्न आयु वर्गों में अलग अलग होती है। आयु विशिष्ट जन्मदर से प्रजननता के क्रम तथा मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह विभिन्न आयु वर्गों की स्त्रियों के जन्म दर की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है और स्त्रियों के वास्तविक सहगणों कोहार्ट्स के अध्ययन में सहायक होती है। इसी के आधार पर कुल प्रजनन दर का परिकलन किया जाता है। 5वां, कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके परिकलन हेतु पहले आयु विशिष्ट जन्म दरों की गणना की जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम समस्त आयु विशिष्ट जन्म दरों के योग को 1000 से विभाजित किया जाता है और तदुपरांत प्राप्त भागफल में आयु वर्गांतर से गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम कुल प्रजनन दर को व्यक्त करता है। इसके परिकलन का सूत्र इस प्रकार है, कुल प्रजनन दर बराबर आयु विशिष्ट जन्म दरों का योग गुणे आयु वर्ग आयु वर्गांतर बटे 1000। कुल प्रजनन दर प्रति स्त्री जन्म लेने वाले शिशुओं की औसत संख्या को प्रकट करती है। 1999 में भारत की कुल प्रजनन दर 3.19 थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 3.50 और नगरीय क्षेत्रों के लिए 2.34 थी। यदि कुल प्रजनन दर 2.0 आती तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या में वृद्धि की संभावना कम है। यह 2.0 से अधिक होने पर जनसंख्या वृद्धि की और 2.0 के कम होने पर जनसंख्या ह्रास की प्रवृत्ति की सूचक होती है। कुल प्रजनन दर की गणना हेतु केवल प्रजनन आयु 15 से 49 वर्ष की स्त्रियों को ही समाहित किया जाता है। 5वां, इस दर पर स्त्रियों की आयु अंतरों का प्रभाव नहीं रह जाता है। इसकी गणना इस परिकल्पना पर आधारित है कि प्रत्येक स्त्री प्रजनन आयु की समाप्ति 49 वर्ष तक जीवित रहती है। यद्यपि अनेक स्त्रियां इसके पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि विकसित देशों में कुल प्रजनन दर 2.0 या इससे कम है, जबकि अनेक अति अल्प विकसित अफ्रीकी देशों में यह 5.0 से अधिक पाई जाती है। अधिकांश विकासशील देशों में कुल प्रजनन दर सामान्यतः 2 से 5 के मध्य है। 6वां, मानव जन्म दर स्टैंडर्ड मानक जन्म दर स्टैंडर्ड बर्थ रेट। विभिन्न प्रादेशिक सामाजिक आर्थिक प्रजाति जाति आदि तत्वों का प्रभाव जनसंख्या के संघटकों पर पड़ता है। इस कारण से प्रत्येक जनसंख्या में स्त्रियों के आयु वितरण में समानता नहीं पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रजनन दर लगभग 15 वर्ष की आयु से आरंभ होकर क्रमशः बढ़ती है और सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर पुनः घटने लगती है, तथा 45 से 49 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। अतः आयु वर्ग के अनुसार भिन्न वितरण वाली जनसंख्या में सामान्य प्रजनन दर भिन्न भिन्न पाई जा सकती है। इन दोषों को कम करने के उद्देश्य से मानक प्रजनन दर का आकलन परिकलन किया जाता है। इसके परिकलन हेतु आयु विशिष्ट जन्म दर की सहायता ली जाती है। इसके लिए प्रत्येक आयु वर्ग की पृथक पृथक प्रत्याशित जन्मों एक्सपेक्टेड बर्थ की गणना की जाती है। समस्त आयु वर्ग के संभावित कुल जन्मों में कुल जनसंख्या से भाग देकर परिणाम में 1000 से गुणा किया जाता है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जा सकती है। मानक जन्मदर बराबर सभी आयु वर्ग के प्रत्याशित जन्मों का योग बटे कुल जनसंख्या गुणे 1000। सातवां, पुनरुत्पादन दर रिप्रोडक्टिव रेट, इसे पुनर्स्थापक दर रिप्लेसमेंट रेट भी कहा जाता है। यह किसी विशिष्ट आयु वर्ग के व्यक्तियों स्त्री या पुरुष की संख्या और आगामी पीढ़ी में उस आयु वर्ग के व्यक्तियों की प्रत्याशित संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करती है। पुनर्स्थापन के इकाई अनुपात के अनुसार प्रत्येक स्त्री एक स्त्री शिशु को जन्म देकर मरती है। उत्पन्न होने वाली स्त्री की प्रजनन क्षमता मृतक स्त्री के समान होती है और वह पुनरुत्पादन आयु तक जीवित रहती है। इसकी गणना के लिए किसी एक वर्ष के लिए कुल स्त्री जन्मों को पुनरुत्पादक आयु वर्ग 15 से 44 की स्त्रियों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। इसके परिकलन हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पुनरुत्पादन दर बराबर स्त्री शिशुओं के जन्मों का योग टोटल बर्थ्स ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बटे पुनरुत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों की कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ फीमेल अंडर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप गुणे 1000। प्रजननता के निर्धारक डिटरमिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, मानव समुदायों तथा समाजों में पाई जाने वाली प्रजननता उत्पादकता में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है, जिसके लिए अनेक जैविक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी होते हैं। प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बहुत लंबी बन सकती है, किंतु प्रजननता को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाले कारकों में प्रजनन क्षमता, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, विवाहित जीवन काल, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक धारणा आदि प्रमुख हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रजननता को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले समस्त कारकों को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर। प्रजननता को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों में प्रजाति, रेस, स्त्री की प्रजनन क्षमता तथा सामान्य स्वास्थ्य प्रमुख हैं। पहला, विभिन्न मानव प्रजातियों निग्रेटो, ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरी, नार्गिड, मंगोलॉयड आदि का विकास भिन्न भिन्न पर्यावरण जलवायु दशाओं में हुआ है। इन प्रजातियों की प्रजनन शक्ति तथा प्रजननता पर पर्यावरणीय प्रभाव का विशेष महत्व होता है। ऐसा भी पाया गया है कि एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजाति समुदायों की प्रजनन दर में अंतर है। इसके साथ ही समान प्रजाति के विभिन्न मानव समुदाय विश्व के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने पर भी उनके प्रजनन दर में विशेष अंतर नहीं है। यद्यपि प्रजाति स्तर पर प्रजननता संबंधी आंकड़ों का अभाव है, किंतु ऐसे अध्ययनों से जो सामान्यीकरण किया गया है उसके अनुसार प्रजाति प्रजननता को प्रभावित करने वाला एक सशक्त कारक है। दूसरा, प्रजननता को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों में स्त्रियों की प्रजनन क्षमता और पुरुषों की संतान उत्पत्ति क्षमता का महत्व अधिक है। स्त्रियों की प्रजनन क्षमता उनके रजस्वला होने से लेकर उसकी समाप्ति तक विद्यमान रहती है। यह अवधि विभिन्न स्त्रियों में थोड़ा भिन्न भी हो सकती है, किंतु सामान्यतः यह 15 वर्ष से 44 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को पुनरुत्पादक आयु रिप्रोडक्टिव एज भी कहते हैं। इसके आरंभ और समापन के समय में कुछ अंतर हो सकता है, किंतु सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिस स्त्री में प्रजनन क्षमता पहले आरंभ होती है उसमें इसकी समाप्ति भी अपेक्षाकृत पहले हो जाती है। किसी किसी स्त्री में यह 50 वर्ष की आयु तक चल सकती है। संतानोत्पत्ति की क्षमता पुरुषों में अपेक्षाकृत पहले ही आरंभ हो जाती है और दीर्घकाल तक विद्यमान रहती है। यदि विभिन्न प्रदेशों के सभी स्त्री पुरुषों में संतान उत्पत्ति की क्षमता समान रूप से विद्यमान हो तो क्षेत्रीय भिन्नता में इसका अधिक महत्व नहीं होता, किंतु कुछ स्त्रियां प्रजनन क्षमता से वंचित होने के कारण संतान उत्पत्ति में अक्षम होती है और कुछ पुरुष भी नपुंसकता अथवा रोग के कारण संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं होते हैं। अतः प्रजननता के निर्धारण में स्त्री पुरुषों की संतान उत्पत्ति क्षमता का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। तीसरा, सामान्य स्वास्थ्य भी एक प्रमुख जैविक कारक है जो प्रजननता को प्रभावित करता है। कुछ रोग या बीमारी के कारण प्रजनन क्षमता पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है, जिसका प्रजननता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में प्रायः मृत्यु दर उच्च होती है, जिसके कारण लोगों की मानसिकता परिवार को छोटा करने की नहीं बल्कि बढ़ाने की हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रजननता में वृद्धि होती है। इसके उदाहरण उष्णकटिबंधीय विकासशील देशों में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार तथा सुधार से जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और लोग परिवार को सीमित रखने के पक्षधर होते हैं, जिसके कारण प्रजननता घट जाती है। इसके उदाहरण शीतोष्ण कटिबंधीय विकसित देश हैं।